सुजीत कुमार की आवाज़ में अलाउद्दीन खिलजी के संबंध में रिकॉर्डिंग होने जा रहा है। अलाउद्दीन खिलजी के जीवन एवं कार्यों का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करें या अलाउद्दीन के राजत्व संबंधित सिद्धांतों की प्रमुख विशेषताओं को बताएं या अलाउद्दीन खिलजी के प्रशासनिक सुधारों की मुख्य विशेषताओं का उल्लेख करें या अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक सुधारों पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें या अलाउद्दीन खिलजी का भू राजस्व व्यवस्था एवं आर्थिक सुधारों की समीक्षा करें या अलाउद्दीन खिलजी की दक्षिण नीति की समीक्षा करें या अलाउद्दीन खिलजी के पश्चात खिलजी साम्राज्य के पतन की प्रक्रिया दिखाएं या खिलजियों के पतन के लिए उत्तरदायी कारणों का वर्णन करें। आंसर: अलाउद्दीन का 20 वर्षीय शासनकाल सल्तनत के इतिहास का एक रचनात्मक अध्याय प्रस्तुत करता है। इसके पूर्व दिल्ली सल्तनत के सुदृढ़ीकरण का काम पूरा हो चुका था और बलवन द्वारा एक शक्तिशाली शासक राजतंत्र की संस्था का विकास भी हो चुका था। अलाउद्दीन की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षी भी इस कार्य में सहयोगी सिद्ध हुई। इसका शासनकाल साम्राज्य विस्तार एवं प्रशासनिक सुधार दोनों ही दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ। अलाउद्दीन का उत्कर्ष: शासक बनने के साथ ही अलाउद्दीन ने अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने का उपाय किए। यह जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का भतीजा तथा दामाद था। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी खिलजी वंश का संस्थापक था। गुलाम वंश के अंतिम सुल्तान कैकुबाद के हत्याकांड में सक्रिय भाग लेकर अलाउद्दीन ने उस वंश की समाप्ति और खिलजी वंश के उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उसकी इस योग्यता से प्रसन्न होकर सुल्तान ने उसे महत्वपूर्ण पद प्रदान किया। इस प्रकार अपनी योग्यता और प्रतिभा के बल पर अलाउद्दीन एक बड़े प्रांत का प्रांतपति बन गया। धीरे धीरे उसकी तुलना प्रांत के श्रेष्ठ सेनापतियों से की जाने लगी। अलाउद्दीन एक चतुर व्यक्ति था और वह इस दिशा में वह किसी प्रकार की जल्दबाजी नहीं करना चाहता था। इसने अपने चाचा और ससुर जलालुद्दीन की निर्मम हत्या कर दी तथा दिल्ली की गद्दी पर अपने को स्थापित किया था। अलाउद्दीन खिलजी की प्रारंभिक कठिनाइयां: अलाउद्दीन ने सुल्तान जलालुद्दीन के खून से हाथ रंग करके दिल्ली की गद्दी को प्राप्त किया था, अतः उसको प्रारंभ में विकट परिस्थितियों और समस्याओं का सामना करना पड़ा। दिल्ली का ताज उसके लिए कांटों की शैया सिद्ध हुआ। चारों ओर से उसने काफ़ी कठिनाइयों से घिरा पाया। उसने अपने चाचा और सुल्तान को मार डाला था, इसलिए उस समय के विचारवान अमीरों सरदारों प्रांतपतियों और सामान्य जनता की आंखों से वह गिर गया। दिल्ली की जनता जो स्वर्गीय सुल्तान की सरलता उदारता से प्रभावित था, वह उसके हत्यारे अलाउद्दीन से काफ़ी असंतुष्ट हो गई थी। इनकी समस्याएँ निम्न थीं: पहला, राज्यारोहण पश्चात दिल्ली की समस्याएं; दूसरा, राजनीतिक समस्याएं; तीसरा, जलालुद्दीन के पुत्रों एवं विरोधियों के दमन की समस्या; चौथा, सैन्य संगठन की समस्या; पांचवा, मंगोल आक्रमण की समस्या; छठा, विद्रोहों और षड्यंत्रों के दमन की समस्या; सातवां, उलेमा वर्ग का प्रभुत्व राजनीति से समाप्त करने की समस्या; आठवां, प्रशासनिक समस्या; और नौवां, आर्थिक एवं सांस्कृतिक विकास की समस्या। इसी के पश्चात अलाउद्दीन की उपलब्धियों का वर्णन भी हम इस प्रकार से कर सकते हैं: पहला, राजस्व संबंधी सिद्धांत; दूसरा, सुल्तान ईश्वर का प्रतिनिधि और उसकी श्रेष्ठता; तीसरा, धर्म और राजनीति का पृथककरण; चौथा, सुल्तान की नीति में खलीफा का महत्व; पांचवा, धर्म में आस्था; छठा, हिंदू विरोधी नीति; सातवां, सुल्तान की निरंकुशता; आठवां, अलाउद्दीन के राजत्व संबंधी सिद्धांत का महत्व; नौवां, प्रारंभिक कार्य; दसवां, इनाम तथा पद वितरण; ग्यारहवां, राज परिवार के विरोधियों का दमन; बारहवां, जलाली अमीरों का दमन; अलाउद्दीन की गृह नीति: पहला, विद्रोहों का दमन; दूसरा, दिल्ली में बसे मंगोलों के षड्यंत्र और विद्रोह; तीसरा, अकत खां एवं हाजी मौला का विद्रोह; चौथा, विद्रोहों के कारणों का विश्लेषण; पांचवां, विद्रोहों के निराकरण का प्रयास; छठा, हिंदू विरोधी नीति का प्रभाव; सातवां, अलाउद्दीन की हिंदू विरोधी नीति की समीक्षा। इसी प्रकार हम अलाउद्दीन की प्रशासनिक सुधार नीति का भी वर्णन इस प्रकार से कर सकते हैं: पहला, अलाउद्दीन के शासन का स्वरूप; दूसरा, केंद्रीय प्रशासन; तीसरा, प्रांतीय प्रशासन; चौथा, न्याय प्रशासन; पांचवां, कठोर दंड विधान; छठा, सैनिक व्यवस्था; सातवां, पुलिस और गुप्तचर व्यवस्था; 8वां राजस्व व्यवस्था। केंद्रीय प्रशासन में हम सुल्तान एवं मंत्री परिषद को देखते हैं, दीवाने ए विजारत में हम वजीर अथवा प्रधानमंत्री के विभाग को देखते हैं, दीवान ए अरिज में हम युद्ध और सेना के विभाग को देखते हैं, दीवान ए ईशा में हम शासन संबंधी पत्र व्यवहार को देखते हैं, दीवान ए रियासत में हम शासन व्यवस्था से संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। अलाउद्दीन की सैनिक सुधार नीति को भी हम इस प्रकार से देख सकते हैं। पहला, सेना की संख्या में वृद्धि। दूसरा, सैनिकों का वर्गीकरण। तीसरा, अस्थाई सेना की व्यवस्था। चौथा, नकद वेतन की व्यवस्था। पांचवा, दाग की व्यवस्था। छठा, अनुभवी सेनापतियों की नियुक्ति। सातवां, अस्त्र शस्त्र के निर्माण की व्यवस्था। आठवां, दुर्गों का निर्माण मंगोल आक्रमण के भय से। नौवां, सैनिक सुधारों का महत्व एवं समीक्षा। अलाउद्दीन के राजस्व संबंधी सुधार। पहला, अलाउद्दीन के राजस्व व्यवस्था में सुधार लाने के उद्देश्य क, सुल्तान की ठाट बाट एवं दरबार की शोभा के लिए अतिरिक्त धन की आवश्यकता। ख, महत्वाकांक्षी योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए धन राशि की आवश्यकता। ग, अनवरत रूप से मंगोल आक्रमण का सामना के लिए विशाल सेना का संगठन के लिए। दूसरा, राजस्व प्रणाली के दोष का अंत। तीसरा, दान में दी गई भूमि का अपहरण। चौथा, हिंदू राजस्व कर्मचारियों की रियासतों विशेषाधिकारों का अंत। पांचवा, करों में वृद्धि। छठा, भूमि कर का निर्धारण। सातवां, कर वसूली में कड़ाई और कठोर दंड की व्यवस्था। आठवां, राजस्व अधिकारियों के बही खातों का निरीक्षण। नौवां, अन्न भंडार गृह का निर्माण। दसवां, राजस्व विभाग का पुनर्गठन। अलाउद्दीन का बाजार नियंत्रण। अलाउद्दीन के सुधारों में उसका बाजार नियंत्रण और मूल्य निर्धारण की नीति का अधिकांश इतिहासकारों ने भूरी भूरी प्रशंसा की है। पहला, इस नीति का उद्देश्य तथा कारण। दूसरा, दैनिक प्रयोग में आने वाले वस्तुओं का मूल्य निर्धारण। तीसरा, बाजार नियंत्रण से संबंधित विभाग। चौथा, बाजारों की व्यवस्था। पांचवा, वस्त्र बाजार का नियंत्रण। छठा, पशु एवं दास बाजार का नियंत्रण। सातवां, मंडी जहां अनाज का व्यापार होता था। अलाउद्दीन के राजनैतिक विचार। अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली सल्तनत की राजनैतिक व्यवस्था को नई दिशा प्रदान की है। सर्वप्रथम उसने सुल्तान के पद को अत्यंत शक्तिशाली बनाया और सामंतों के प्रभाव को नगण्य बना दिया। उसने शक्तिशाली सैन्य व्यवस्था का गठन भी किया। अलाउद्दीन ने बलबन द्वारा प्रतिपादित निरंकुशता के सिद्धांत को और प्रबल बनाया। उसके अनुसार सुल्तान का पद वही व्यक्ति प्राप्त करता है जो सैनिक रूप से सक्षम हो। अलाउद्दीन ने सामंत वर्ग को शक्तिहीन बनाया, धर्म के प्रभाव से राजनीति को मुक्त किया और पहली बार एक नियमित अर्थ प्रणाली को लागू किया। इस प्रकार हम देखते हैं कि अलाउद्दीन की सत्ता के अधीन सुल्तान की निरंकुशता अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई। अलाउद्दीन ने धर्म के प्रभाव से राजनीति के मुक्त रखने में निर्णायक सफलता प्राप्त की, अर्थात राजनीतिक निर्णयों में राज के हित को प्राथमिकता दी जाएगी न कि शरीयत के आदेश को। इसने शासक के कर्तव्यों में राज्य विस्तार को भी अनिवार्य रूप से सम्मिलित किया। अलाउद्दीन का राजत्व सिद्धांत तीन मुख्य बातों पर आधारित था, शासक की निरंकुशता, धर्म और राजनीति का पृथककरण और साम्राज्यवाद। अलाउद्दीन ने विद्रोह संबंधी कारणों को जानने और विद्रोहों का समाधान करने के लिए भी उपाय किए। उसने विद्रोह के चार मुख्य कारण निर्धारित किए। पहला, सुल्तान को अपने राज्य में घटने वाली घटनाओं की पूरी जानकारी नहीं रहती, अतः षड्यंत्र एवं विद्रोह होते रहते हैं। दूसरा, सामंत वर्ग में शक्तिशाली परिवारों के बीच वैवाहिक संबंध आदि से उनकी शक्ति में वृद्धि होती है। तीसरा, प्रजा के बीच एक धनी एवं उद्दंड वर्ग प्रस्तुत है जो बराबर सुल्तान की सत्ता को चुनौती देता है। चौथा, राजधानी में त्योहारों, उत्सवों एवं भोज के अवसरों पर मदिरापान होता है जिससे षड्यंत्रकारियों को, अफवाह फैलाने वालों को, नशे की हालत में लोगों को बहकाने का अवसर मिल जाता है। अतः अलाउद्दीन ने एक योग्य गुप्तचर व्यवस्था का गठन किया ताकि उसे सभी महत्वपूर्ण घटनाओं की जानकारी मिलती रहे। उसने सामंतों के बीच शादी विवाह को नियंत्रित कर दिया, उनकी शक्ति में वृद्धि न हो रहे। अलाउद्दीन की दक्षिण नीति। अलाउद्दीन ने दक्षिण को भी जीतने का संकल्प किया। वह दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने विंध्याचल पर्वतों को पार करने करके दक्षिणी प्रायद्वीप को जीतने का प्रयत्न किया। उस समय दक्षिण भारत में चार शक्तिशाली राज्य, पहला देवगिरी का यादव राज्य जिसकी राजधानी देवगिरी थी, दूसरा तेलंगाना का काकतीय राज्य जिसकी राजधानी वारंगल थी, तीसरा कृष्णा नदी के दक्षिण में स्थित होयसल राज्य जिसकी राजधानी द्वार समुद्र थी, चौथा सुदूर दक्षिण का पांडे राज्य जिसकी राजधानी मदुरा थी। जहां राजपुताना के प्रति अलाउद्दीन ने किसी निश्चित नीति का निर्धारण नहीं किया, वहां दक्षिण के चार राज्यों से संबंधित उसकी नीति पूर्णतः स्पष्ट है। देवगिरी, यद्यपि अलाउद्दीन ने सुल्तान बनने के पूर्व ही देवगिरी पर विजय हासिल कर ली थी, इस विजय से देवगिरी की समस्या पूर्णतः हल नहीं हो सकी। वहां का राजा रामचंद्र ने सुल्तान को वार्षिक कर देना बंद कर दिया था, इसलिए उसका दमन करने के लिए 1306 से 1307 ईस्वी में एक सेना सल्तनत के नायब मलिक काफूर के नेतृत्व में भेजी गई। यद्यपि देवगिरी के शासक ने वीरतापूर्वक खिलजी सेना का मुकाबला किया, परंतु वह पराजित हो गया। तेलंगाना, 1308 ईस्वी में काफूर को तेलंगाना की विजय हेतु भेजा गया। काफूर ने वारंगल को घेर कर भीतर की एक रक्षक सेना को भारी क्षति पहुंचाई। राजा ने आत्मसमर्पण कर दिया तथा उसे सुल्तान के लिए कर देने का वचन दिया गया। होयसल, 1310 ईस्वी में मलिक काफूर द्वारा समुद्र की विजय पर निकला। वहां का राजा वीर वल्लभ तृतीय था। युद्ध में उसकी पराजय हुई और उसकी राजधानी पर आक्रमणकारियों का अधिकार हो गया। होयसल राज्य को बाध्य होकर युद्ध का भारी हर्जाना चुकाना पड़ा तथा दिल्ली सुल्तान की अधीनता स्वीकार करनी पड़ी। पांडे राज्य, द्वार समुद्र से काफूर ने पांडे राज्य के लिए प्रस्थान किया जो दक्षिण प्रायद्वीपीय के अंतिम छोर पर स्थित था। उसने पांडे राज्य पर चढ़ाई कर उसे खूब लूटा और रामेश्वरम तक अभियान किए। इन विजयों के साथ काफूर ने अपने साथ अपार लूट का माल ले गया। इस प्रकार दक्षिण की विजय पूर्ण हो गई और लगभग समस्त दक्षिण भारत पर दिल्ली का प्रभुत्व स्थापित हो गया। अलाउद्दीन की सफलता के पीछे एकमात्र निर्णायक तत्व था दक्षिणी राजाओं की पारस्परिक शत्रुता। इसका यह तात्पर्य नहीं है कि अलाउद्दीन की राज्य विस्तार नीति केवल सफलताओं की लंबी कथा है। यह तथ्य भी ध्यान देने योग्य है कि अलाउद्दीन की सफलताएं अल्पकालीन सिद्ध हुई। जब सुल्तान का स्वास्थ्य गिरने लगा तो उसकी शक्ति भी कमजोर पड़ने लगी। मुबारक खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक के दक्षिणी युद्धों से स्पष्ट है कि अलाउद्दीन की सफलताएं दीर्घकालीन नहीं थीं। फिर भी इतना तो कहा ही जा सकता है कि अपनी विस्तारवादी नीति के फलस्वरूप वह लगभग संपूर्ण भारत का स्वामी बन गया। अलाउद्दीन के राजत्व संबंधी सिद्धांत, बलबन के पश्चात अमीरों और उलेमा के प्रभाव, उनकी राजनीति में हस्तक्षेप और षड्यंत्रों ने सुल्तान की प्रतिष्ठा बिल्कुल ही नष्ट कर दी थी। अतः उसकी सबसे बड़ी समस्या अपनी महिमा और गौरव को पुनः स्थापित किया जाए। पहला, हिंदुओं के प्रति नीति कठोर, अनुदार, आर्थिक दशा अत्यंत दयनीय। दूसरा, सुल्तान की शक्ति में वृद्धि। सुल्तान को सर्वशक्तिशाली, निरंकुश शासक, सर्वगुण संपन्न मानता था। वह राज्य और सरकार में कोई विभेद नहीं करता। तीसरा, आंतरिक विद्रोहों का दमन। पांचवा, चौथा, अलाउद्दीन के चार अध्यादेश। क, धनी व्यक्तियों की संपत्ति छीनना। ख, गुप्तचर विभाग का गठन। ग, मध्य निषेध को लागू करना। घ, अमीरों के मेल मिलाप पर प्रतिबंध। कुल मिलाकर उनका कथन था कि राजा सर्व शक्तिमान होता है, वह ईश्वर का प्रतिनिधि होता है। खिलजी साम्राज्य के पतन के कारण, पहला, खिलजी सुल्तानों की अलोकप्रियता। दूसरा, अलाउद्दीन की निरंकुशता और सैनिक तानाशाही। तीसरा, मंगोल आक्रमण के प्रभाव। चौथा, अयोग्य एवं दुर्बल उत्तराधिकारी। पांचवा, उत्तराधिकार संबंधी निश्चित नियम का अभाव। छठा, सैनिक शक्ति का ह्रास। सातवां, दासों का पतन। आठवा, अयोग्य दुर्बल लोभी अधिकारी। नौवा, हिंदुओं का विद्रोह। दसवां, आंतरिक विद्रोह और षड्यंत्र। अलाउद्दीन खिलजी का सुधार इस प्रकार है। इसको हम दो भागों में बांट सकते हैं, आर्थिक सुधार और बाजार भाव नियंत्रण नीति। आर्थिक सुधार में हम इसे चार भागों में बांटते हैं, व्यक्तिगत धन का हरण, भूमि हरण, कर निर्धारण तथा हिंदुओं के साथ की नीति। और हम बाजार भाव नियंत्रण की नीति में हम तीन प्रकार बांटते हैं, वस्तुओं का निर्धारित मूल्य, निरीक्षकों की नियुक्ति की और गुप्तचर विभाग। निरीक्षकों की नियुक्ति में हम प्रभाव और सफलता के कारण को देखते हैं। इसी प्रकार अगर बाजार नियंत्रण में सुधार को हम देखें तो इसके निम्न पहलू हैं, पहला, वस्तुओं का निर्धारित मूल्य। दूसरा, सरकारी कर्मचारियों द्वारा अनाज एकत्रित करवाना। तीसरा, अनाज की खरीद व बेच पर राज्य का नियंत्रण। चौथा, सरकारी दुकानों की व्यवस्था। पांचवा, बाजार कर्मचारियों का प्रबंध। छठा, नाप तोल के लिए सरकारी बाट। सातवां, दासों व पशुओं के निर्धारित मूल्य। आठवां, बाजार की देखरेख के लिए गुप्तचर की नियुक्ति। 9. अव्यवस्था फैलाने वालों के लिए कठोर दंड की व्यवस्था। मोटी रूप में अगर हम अलाउद्दीन खिलजी के संक्षेप में वर्णन करें तो इस प्रकार हम कर सकते हैं। अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 ईस्वी तक अपनी शासन व्यवस्था को चलाए। अलाउद्दीन 1296 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा। वह दैवी सिद्धांत को मानने वाला था। वह बड़ा महत्वाकांक्षी वीर और योग्य शासक था। उसके 4 सेनापति उलगु खां, जफर खां, नसरत खां, अलप खां बड़े प्रसिद्ध हुए। बाद में मलिक काफूर बड़ा वीर सेनापति हुआ। उनकी उत्तर भारत पर विजयों को देखें तो हम 1297 ईस्वी में उलगु खां और नसरत खां ने गुजरात विजय किया। बधेला राजा कर्ण सिंह देवगिरी भाग गया। उसकी पत्नी कमला देवी बंदी बनाकर दिल्ली भेज दी गई। गुजरात विजय में अलाउद्दीन को 1000 दिनारी मलिक काफूर मिला, जो बाद में उसका बड़ा वीर सेनापति बना। दक्षिण के राज्यों की विजयी। दक्षिण की संपूर्ण विजय अलाउद्दीन के प्रसिद्ध सेनापति मलिक काफूर ने की। पहला 1306 ईस्वी से 1307 में यादव नरेश द्वारा रामचंद्र देव की राजधानी देवगिरी विजय। दूसरा तेलंगाना राज्य की राजधानी वारंगल 1309 में विजय की, वहाँ का राजा रुद्रदेव हार गया। तीसरा 1310 ईस्वी में होयसल राज्य की राजधानी द्वार समुद्र की विजय हुई। चौथा 1311 ईस्वी में पांडे राज्य की राजधानी मदुरा विजय की। पांचवा मलिक काफूर सेतुबंध नामेश्वर तक पहुंचा, फिर लूट का सामान लेकर दिल्ली लौट गया। छठा देवगिरी में राजा रामचंद्र देव की मृत्यु हो गई और राजा शंकर देव गद्दी पर बैठा। अतः मलिक काफूर ने 1312 ईस्वी में शंकर देव को परास्त कर उसका वध कर दिया। इस तरह 1312 से 1313 ईस्वी तक संपूर्ण उत्तर और दक्षिण भारत की विजय पूर्ण हो गई। मंगोल आक्रमण भी अलाउद्दीन खिलजी की प्रमुख उपलब्धि थी। इसके शासन सुधार को हम अगर देखें तो उसने स्वयं मदिरापान त्याग किया। वह राज्य में मदिरापान निषेध लगाया। दूसरा राजकाज की स्वयं देखभाल की। तीसरा अमीरों का आपसी मेलजोल बंद कर दिया। चौथा दुआब के हिंदुओं पर कर लगाया। पांचवा गुप्तचर विभाग का संगठन किया। छठा एक बहुत बड़ी सेना का संगठन किया। सातवां बाजार भावों का नियंत्रण किया। आठवां अन्न भंडार खोले। नौवां राज्य के मामलों में मुल्ला मौलवियों को दूर किया। दसवां सेना को स्वयं निरीक्षण कर और घोड़े दागने की प्रथा चलाई। ग्यारहवां भूमि प्रबंध पर बड़ी शक्ति से कर वसूल किए। इस प्रकार अलाउद्दीन का पूर्ण निरंकुश सैनिक शासन रहा। अलाउद्दीन की मृत्यु 1316 ईस्वी में हो गई। अलाउद्दीन के उत्तराधिकारी को अगर देखें तो अलाउद्दीन की मृत्यु के बाद मलिक काफूर बहुत शक्तिशाली बन गया। उसने राजकुमारों का वध कर डाला और अंत में अलाउद्दीन के एक छः वर्ष के लड़के उमर खां को सुल्तान बनाकर स्वयं बागडोर अपने हाथ में संभाल ले। किंतु अलाउद्दीन के एक अन्य लड़के मुबारक खान ने अमीरों की सहायता से मलिक काफूर का वध कर दिया और स्वयं 1316 ईस्वी में बादशाह बन गया।